ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 32 श्लोक संख्या 6। निवृत्त धर्म निरता निर्ममा निरहंकता। स्वधर्म आप्तेन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की निवृत्ति धर्म, विरक्ति के लिए धार्मिक कार्यों में निरता, निरंतर लगे हुए, निर्ममा स्वामित्व के ज्ञान के स्वामित्व के ज्ञान बिना, निरहंकता अहंकार रहित, स्वधर्म अपने वृत्ति परक कर्तव्य से, आप्तेना संपन्न, सत्वेना अच्छाई से, परिशुद्धेना पूर्णतः शुद्ध, चेतसा चेतना से। अनुवाद कृपया सुनिए। अपने कर्तव्य निर्वाह विरक्त भाव से तथा स्वामित्व की भावना से अथवा अहंकार से रहित होकर काम करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध चेतना के द्वारा अपनी स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर और इस प्रकार से भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हो सकता है। कृपया दोहराइए अनुवाद। अपने कर्तव्य निर्वाह विरक्त भाव से तथा स्वामित्व की भावना से अथवा अहंकार से रहित होकर काम करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध चेतना के द्वारा अपनी स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर और इस प्रकार से भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हो सकता है। तात्पर्य यहां पर निवृत्ति धर्म निरता का अर्थ है विरक्ति के लिए धार्मिक कार्यों को संपन्न करने में निरंतर लगे रहना। धार्मिक कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक प्रवृत्ति धर्म कहलाता है जिसका अर्थ है उच्चतर लोकों तक जाने या आर्थिक संपन्नता के लिए गृह मेधियों द्वारा संपन्न धार्मिक कार्य जिनका अंतिम उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है। इस संसार में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता की भावना से युक्त रहता है, यह प्रवृत्ति कहलाती है। किंतु विपरीत धार्मिक कार्य जिसे निवृत्ति कहते हैं परमेश्वर के लिए कर्म करना है। कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहकर मनुष्य ना तो किसी स्वामित्व का दावा कर सकता है और ना ही उसे अहंकार रहता है कि वह ईश्वर या स्वामी है। वह अपने को सदैव दास समझता है। यह चेतना को शुद्ध करने की विधि है। केवल शुद्ध चेतना से ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। भौतिकवादी व्यक्ति उच्च पद पाने पर भौतिक जगत के भीतर किसी भी लोक में प्रविष्ट हो सकते हैं, किंतु यह सब बारंबार विनष्ट होते रहते हैं। तो भगवान कपिल देव जी माता देवती को जीवों की अलग अलग स्थिति के बारे में बताते हुए, किस तरह से जीव नरक में जाता है, उसके बाद कैसे उसे अलग अलग दुख प्राप्त होता है, उसके बाद गर्भ में जीव आता है, गर्भ के दुखों का वर्णन करा। माता देवहूति के को माध्यम बना के, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना के, जो हम जैसे जीव होते हैं जो इस भौतिक संसार में आए हैं किसी भी कारण से, या फंसे हुए हैं जन्म मृत्यु के चक्र में, संदेश दिया, उसी तरह से भगवान कपिल माता देवहूति के को माध्यम बना के हम जैसे जीवों को संदेश देना चाहते हैं। वे समझाना चाहते हैं कि कैसे ये संसार दुखाल्यम है। हम पढ़ते तो हैं दुखाल्यम है, लेकिन भगवान कपिल देव बहुत अच्छे से कैसे जीव गर्भ में दुख पाता है। पहले 9 महीने गर्भ में आने के बाद हम अक्सर भूल जाते हैं, तो इसीलिए ये बार बार संदेश दिया जाता है। तो भगवान कपिल देव ने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे गर्भ में दुख मिलता है जीव को। उसके बाद गर्भ से आने के बाद भी उसे दुख ही दुख मिलता है। उसका मुख्य कारण बताया कि इंद्रिय तृप्ति की भावना, और इंद्रिय तृप्ति की भावना में भी सबसे मुख्य कारण जो भगवान कपिल देव ने समझाया वो है कि स्त्री का पुरुष के प्रति आसक्ति और या अटैचमेंट, या पुरुष का स्त्री के प्रति। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान कपिल ने बहुत अच्छे से समझाया कि अगर कोई व्यक्ति पूर्णतः स्त्री में आसक्त है तो उसे कुत्ते के समान बताया एक श्लोक में, तो कि कैसे वो जैसे कुत्ता होता है। अगर आपने देखा होगा, खासकर पाश्चात्य देशों में अगर आप देखेंगे, इसका आजकल भारत में भी अगर आप शहरों में जाएंगे, कैसे कुत्ता अपने मालिक के पीछे पीछे चलता है, तो ऐसे ही व्यक्ति अगर इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है तो कैसे स्त्री के पीछे पीछे चलता है या स्त्री के कहने पर चलता है, और कैसे अगर स्त्री पुरुष से आसक्त है तो वो पुरुष को सिर्फ एक अपने इंद्रिय तृप्ति की साधन मानती है और हमेशा उससे कुछ ना कुछ डिजायर या इच्छा रखती है कि ये मुझे इस तरह का आनंद देगा, ये मुझे उस तरह का आनंद देगा। क्यों? क्योंकि उनमें कृष्ण भावना की कमी होती है। आखिरी के श्लोकों में भगवान कपिल ने समझाया कि किस तरह से एक गृहस्थ व्यक्ति को रहना चाहिए, और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से तात्पर्य में भी समझाया कि कैसे अगर व्यक्ति किसी कारणवश या गृहस्थ आश्रम में है, और हम जानते भी कि इस कलयुग में काफी सारे जो व्यक्ति अगर वो कृष्ण भावना में भी हैं तो वो गृहस्थ जीवन में होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना करी। उस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में भी अगर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक, तो 90% जो इसके सदस्य हैं जो कृष्ण भावना अमृत की साधना का प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो गृहस्थ ही हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी उसमें तात्पर्य में पिछले श्लोक के आखिरी के श्लोकों के तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझाते हैं कि कैसे व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। अब इसी गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि व्यक्ति फ्रूटिव एक्टिविटी जिसे कर्म बंधन कहते हैं उसमें बहुत आसानी से आ जाता है, तो उसी का भी विस्तार से इस श्लोक में भगवान कपिलदेव जी समझा रहे हैं कि उससे हमें कैसे बचना है, या वो ही हमारा, जैसे स्त्री पुरुष के प्रति आसक्त हो गई है और पुरुष स्त्री के प्रति आसक्त हो गया, तो उसमें जब गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति आता है या जीव आता है तो उसको बहुत सारे सामाजिक कार्य करने पड़ते हैं जिसे हम कहते हैं, जैसे हमने पिछली कक्षा में भी समझने का प्रयास किया था कि कैसे उसे कई बार ऐसे व्यक्तियों के सामाजिक कार्यों में जाना पड़ता है जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, फिर भी उसे जाना पड़ता है क्योंकि वो समाज में है, एक गृहस्थ जीवन बिता रहा है, तो उसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी। तो उसी बारे में भगवान कपिल देव अब ये समझा रहे हैं कि कैसे, दो तरह के इसमें गृहस्थ समझाए गए हैं या जो तरह के व्यक्ति इसमें समझाए हैं, एक हैं जो प्रवृत्ति धर्म को अपनाते हैं, ये जो एक प्रवृत्ति धर्म की तरफ लगे रहते हैं, रमाकांत प्रभु ने बहुत अच्छे से समझाया था पिछली कक्षा में जो कि कैसे हम देखते हैं कि जैसे अग्रवाल जो लोग होते हैं, ये जो बनिए लोग होते हैं, मतलब हर एक जगहों पर कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दान बहुत देते हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं मतलब धार्मिक कार्य को, कहीं पर धार्मिक कार्य होता है तो उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, इवन कई बार वो भागवत सप्ताह भी कराते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, चलो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और प्रभुपाद जी उन लोगों को भी गृह में भी कह रहे हैं जो धार्मिक कार्यों में तो लगे हुए हैं, जो अधार्मिक कार्यों में लगे उनका तो कहना ही नहीं, उनकी तो चर्चा ही नहीं है यहां पर, भागवतम में कोई मतलब ही नहीं है चर्चा करने का। अब चर्चा किसकी हो रही है, ऐसे गृहस्थों की जो सभ्य हैं, बहुत सभ्य हैं, देखने में धार्मिक भी दिखते हैं, उनमें भी दो तरह के गृहस्थ, एक प्रवृत्ति में लगा हुआ है और एक निवृत्ति में, श्रील प्रभुपाद जी जो समझा रहे हैं इसमें कि जो निवृत्ति शब्द है उसी को समझाते हुए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक जो सभ्य गृहस्थ है वो बहुत धार्मिक कार्य में लगा हुआ, बहुत अच्छा दिखता है, अपनी एक पत्नी के साथ ही रहता है और स्त्रियों के साथ घूमने में उसका कोई मतलब सोचता भी नहीं है, उस बारे में चिंतन भी नहीं है उसका, और हमें भी बहुत अच्छा दिखता है, हम देखते हैं भारत में खासकर, क्योंकि जो आर्यन जिसे कहते हैं कि जो अपने जो वैदिक संस्कृति के अनुसार चलते हैं वो आर्यन होते हैं, जो वैदिक संस्कृति के अनुसार नहीं चलते वो अनार्यन होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं बस, तो यहां बात हो रही है सिर्फ उन्हीं लोगों की जो वैदिक संस्कृति के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी दो तरह बताएं, एक निवृत्ति और एक प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति की जो बात हो रही है कि वो दिखते तो हैं अपनी एक पत्नी के साथ रह रहे हैं, पुत्र भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, बहुत अच्छे से उनका देखभाल भी कर रहे हैं और खूब दान भी दे रहे हैं कई बार, लेकिन अगर उनका अंतिम उद्देश्य ये सब कार्य करने का क्या है कि मेरे परिवार और फलाफूल, मेरा परिवार और फले और बढ़े, मेरा व्यवसाय और बढ़े, जैसे अक्सर देखा जाता है, राइट, अक्सर देखा जाता है व्यक्ति भागवत सप्ताह कई बार करवाता भी है या कोई भी और धार्मिक कार्यों का आयोजन करेगा, इसलिए नहीं करेगा कि मुझसे, मुझे अपने परिवार से विरक्ति आए या मुझे भगवान में मेरा मन लगे, वो शो ऑफ करने के लिए, देखो मैं कितना बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं करवा रहा हूं, मैं धार्मिक अनुष्ठान करवा रहा हूं, और मैं कई बार गणेश पूजा करवा रहे हैं, और अगर कोई देवी पूजा का तो वो देवियों की कुछ करवा रहे हैं, सब करवाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और समाज में बहुत अच्छा भी लगता है, ऐसे लोगों का बहुत सम्मान भी किया जाता है, सही बात है ना, लेकिन वो लोग, उनका अंतिम उद्देश्य क्या है, इंद्रिय तृप्ति, किस तरह से मेरा व्यवसाय और बढ़े, किस तरह से मेरा नाम और लोग जाने, कैसे मैं और प्रसिद्धि पाऊं, तो उसका खंडन कर रहे हैं कपिल देव भगवान, उसका खंडन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी उसको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। जैसे कि पिछले श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, अर्जुन का उदाहरण दे रहे थे। देखिए अर्जुन की स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। एक अर्जुन बहुत ऊंचे परिवार से, राजाओं के परिवार से कह लीजिए, और उसमें क्षत्रिय है, पूरे संसार में उसका नाम है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। श्रील प्रभुपाद जी उसका एग्जाम्पल देते हैं पिछले तात्पर्य में, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। उसके सामने क्षत्रिय, एक क्षत्रिय व्यक्ति के सामने उसकी स्त्री का अपमान हुआ है। आप समझिए अर्जुन की स्थिति को कि एक व्यक्ति क्षत्रिय है और उसकी स्त्री का सम्मान भरे, मतलब राजाओं के सामने, पूरी राज्यसभा के बीच में उसकी स्त्री का अपमान किया गया। अपमान ही नहीं किया गया, उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। उसके बाद उसको उसकी खुद की और उसके भाइयों के, अपने बड़े भाइयों के सामने और छोटे भाइयों के सामने, उन सब का मतलब अपमान किया गया पूरी राज्यसभा में। उसके बाद उन्होंने कितने साल, 12 साल का वनवास काटा है। उसके बाद वो युद्ध करने के लिए, अब उसके बाद भी भगवान कृष्ण ने कोशिश करी, जो उनके सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं भगवान कृष्ण, उन्होंने कोशिश करी कि नहीं मैं एक बार और दुर्योधन से बोलता हूं कि नहीं वो राज्य दे देगा। 5 गांव ही दे रहे वही बहुत है, लेकिन दुर्योधन ने 5 गांव नहीं कहा, उन्होंने कहा एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन में ईर्ष्या है, ईर्ष्या का यह स्तर होता है। अगर व्यक्ति ईर्ष्या करता है किसी से तो उसमें इस स्तर तक वो गिर जाता है कि वो एक सुई की बराबर भूमि भी दूसरे व्यक्ति को नहीं देख सकता, क्योंकि उसे ये ईर्ष्या, ये डर रहता है कि कहीं ये इस भूमि से ही मेरे से अच्छा ना बन जाए। युधिष्ठिर महाराज और पांडव के प्रति इतनी ईर्ष्या थी कि उसे पता था एक बार मैंने इन्हें एक जंगल जैसा स्थान दिया था, वहां उन्होंने इतना अच्छा स्थान बना लिया था, अगर मैं इसे एक सुई के बराबर भूमि भी दूंगा तो फिर से मेरे से अच्छे हो जाएंगे। दुर्योधन की ईर्ष्या इतनी थी। और अर्जुन देखिए, एक क्षत्रिय राजा, क्षत्रिय पूरे भारत, मतलब पूरे संसार भर में प्रसिद्ध है, द्रौपदी को जीत के लाए थे पूरे भारत में। सोचिए अपनी स्थिति को समझिए, आप पूरे भारत भर में प्रसिद्ध हैं, आपको जानते हैं अच्छे से लोग, आप फिर आपका इस तरह से अपमान हुआ, आपकी स्त्री का अपमान हुआ, और उसके बाद 13 साल हमने वनवास काटा, और उसके बाद फिर जब युद्ध, जब निर्णय का समय आया, युद्ध होने का समय आया, अर्जुन कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? श्रील प्रभुपाद जी वहां भगवदगीता के तात्पर्य में भी लिख रहे थे और यहां पर भी लिखते हैं, क्योंकि उस समय को सोच रहा था कि अगर ये सब मर जाएंगे तो मैं कैसे इंद्र तृप्ति करूंगा। एक कारण तो ये बताया, मैं किसके साथ आनंद लूंगा राज्यों का। उसमें तो एक कारण प्रभुपाद जी समझाते हैं उसमें कि ये है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है, क्या अर्जुन धार्मिक नहीं था? क्या वो जानता नहीं था क्या क्या धर्म है, क्या धर्म है? लेकिन भगवान समझाना चाहते हैं, अगर व्यक्ति इस स्थिति में भी है, अगर उसमें आसक्ति है तो उसका यह हाल होगा कि इतना अपमान होने के बावजूद, इतना परेशान होने के बावजूद अगर आसक्ति है तो व्यक्ति रोने लग जाएगा जब भगवान के लिए कार्य करना पड़ेगा। और भगवान, एक लेक्चर में सुन रहा था एक भक्त का पूना से, कहते हैं भगवान जानबूझ के अर्जुन को ऐसी जगह पे ले गए जहां से वो देख सकता था भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य जी को, क्योंकि उनसे उनको आसक्ति थी। इन गुरु को मारूंगा मैं, अपने इनको मारूंगा, कैसे मारूंगा इनको? तो भगवान, अगर ये मैं क्यों बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम कृष्ण भावना में भी अगर आ जाए कोई व्यक्ति, अगर उसमें आसक्ति है तो भगवान हमें जानबूझ के ऐसी स्थिति में डालेंगे जहां हमें आसक्ति है, क्योंकि भगवान हमारी छोटी से छोटी आसक्ति को भी खत्म करेंगे। ये भगवान की कृपा है, कृष्ण की कृपा है। ये हम अक्सर देखेंगे, भक्तों को भी ऐसा अनुभव होगा, जिस चीज में आसक्ति होती है भगवान जानबूझ के ऐसी स्थिति में डालते कि नहीं, ये आसक्ति खत्म करो। अर्जुन को जानबूझ के भगवान उस स्थान पर ले गए जहां से वो देख सकता था अपने सारे प्रियजनों को। तो ऐसे अगर हम भक्ति में लगे हुए हैं लेकिन हमारी आसक्ति है, मान लीजिए यहां तो गृहस्थों की बात मैं बता रहा हूं, अगर हम ब्रह्मचारी भी अगर किसी चीज में हमारी आसक्ति है तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है। और भगवान जानबूझ के दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं तो भगवान देखते हैं कि ये मेरे से प्रार्थना कर रहा है। चाहे शुद्ध नाम नहीं भी ले रहे लेकिन भगवान की तो, भगवान ने तो देखा ना ये मेरा नाम लेना शुरू कर दिया इसने, तो भगवान एक्टिव हो जाते हैं, भगवान एकदम से उस जीव के प्रति सचेत हो जाते हैं, वरना वो अनुमंता अनुदृष्टा बनकर रहते हैं और जीवों के लिए। लेकिन जैसे ही जीव महामंत्र का उच्चारण शुरू करता है, प्रयास शुरू कर देता है, हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज एक बार हरिद्वार में कथा करते हुए बोल रहे थे कि व्यक्ति जीव जिस दिन ये सोच लेता कि मैं भागवत सुनने जाऊंगा उसी दिन से भगवान शुरू हो जाते हैं, कि सोचने से, अभी सुनने नहीं गया, अभी शुरू नहीं करा उसने, जिस दिन वो सोचने लगता है नहीं नहीं मैं अब भागवत सुनूंगा उसी दिन से भगवान शुरू हो जाते हैं, उसके जीव के प्रति सचेत हो जाते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो जाता। क्योंकि इसके आखिर में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति ही भगवत धाम जा सकता है, केवल शुद्ध चेतना से ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हुआ जा सकता है, अशुद्ध चेतना से नहीं। तो जब तक जीव इस तरह से आसक्ति में रहेगा, ये तो कृष्ण भावना की बात बता रहा था, उससे पहले जो मैं बता रहा था कि सामाजिक व्यक्ति जब तक ये इंद्रिय तृप्ति की भावना रहेगी और हम कार्य करते रहेंगे तो भगवत धाम जाने का तो मतलब ही नहीं है। हाँ, कुछ पुण्य कार्य करके ऊंचे लोकों में जरूर जाया जा सकता है जहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या है? हमने इतनी तपस्या करी, हमने इतना पैसा कमाया, मान लीजिए जो दान देते हैं, जो बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, कितना पैसा लगता है, कितनी मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे काम करके, कई बार झूठ बोल के, कई बार कितनी तपस्या करके वो करते हैं कार्य, और उसका परिणाम क्या हुआ? फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फटना। तो समझदार व्यक्ति नहीं करेगा ना, समझदार व्यक्ति क्यों चाहेगा बार बार इस दुखालय में आना? जो भगवान कपिल की इन शिक्षाओं को समझेगा, सुनेगा पहले ठीक से, फिर उसको जीवन में उतारेगा, फिर वो क्यों कहेगा कि मैं बार बार इस 9 महीने उल्टा लटकूं किसी माता के गर्भ में? और एक बात और, बहुत अच्छी हम चर्चा कर रहे थे गृहस्थ आश्रम के बारे में ही रमाकांत प्रभु से, रमाकांत प्रभु कह रहे थे कि गृहस्थ आश्रम में ज्यादा तकलीफ तो माता को होती है, नहीं होती क्या? 9 महीने पहले बच्चे को उल्टा गर्भ में रखना, उसके बाद उसको जन्म देना, कितना परेशानी होती है, और उसके बाद कम से कम 4-5 साल तो अच्छे से उसकी देखभाल करनी होती है, उसका मलमूत्र साफ करना। पुरुष को क्या है, मान लीजिए 8 घंटे बाहर काम करके कर लेगा कुछ भी थोड़ा बहुत, इसलिए स्त्रियों को ज्यादा समझना चाहिए। भगवान कपिल देव समझा रहे थे कि वो जो हांड मास का पुतला है उसको नहीं समझना चाहिए मेरे यही है सब करने वाले, नहीं, भगवान कपिल देव बहुत अच्छे से समझा रहे हैं उसकी मूछें हैं और ये है, अगर स्त्री कृष्ण भावना भावित नहीं है तो वो तो यही समझेगी नहीं, अपनी सेवाएं करनी है कृष्ण को सेंटर में रखते हुए, हां ये कृष्ण की कृपा से ये मुझे व्यक्ति मिले हैं, पति हैं मेरे, इनकी मैंने सेवा करनी है क्योंकि ये भी कृष्ण के दास हैं, मुझे अच्छे से इन्हें प्रसाद खिलाना है, अच्छे से घर साफ रखना है, अच्छे से बच्चों को पालना है, क्यों? क्योंकि वो भी कृष्ण के हैं। तो ऐसी स्त्री जब शरीर छोड़ेगी तो वो भगवत धाम जाएगी, अन्यथा उसे क्या, भगवान कपिल देव प्रभुपाद जी क्या समझा रहे थे उस तात्पर्य में कि उसे पुरुष का शरीर मिल जाएगा क्योंकि वो अपने पति के बारे में सोच रही है। उसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद जी ये कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति है वो भी, क्योंकि कम से कम अगली बार उसे पुरुष का शरीर मिलेगा तो उसमें क्योंकि ज्यादा सुविधा है, ब्रह्मचारी रह सकता है, पूर्णतः शुरू से ही समर्पित रह सकता है। तो ऐसे निवृत्ति धर्म का पालन नहीं करना, माफ कीजिएगा प्रवृत्ति। उसके बाद प्रभुपाद जी समझाते हैं निवृत्ति के बारे में कि जिसकी बात मैं अभी कर रहा था कि ऐसे धर्म का हमें पालन करना है कि ऐसे संसार में रहते हुए जैसे भौतिक कार्य उसमें लिखा हुआ है अनुवाद में भौतिक कार्य जो भी कार्य दिखते हैं भौतिक कार्य दिखते हैं कि एक वो स्त्री वो भी अपने बच्चों को पाल रही है और एक सामान्य स्त्री है वो भी अपने बच्चों को पाल रही है दिखते हैं भौतिक कार्य लेकिन अगर वो कृष्ण को कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहकर मनुष्य जब कोई कार्य करता है तो वह उन भौतिक कार्यों में नहीं फंसता इसे कहते हैं निवृत्ति धर्म। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसे कई उदाहरण हम देखते हैं जैसे अभी हमने अर्जुन की चर्चा करी वही अर्जुन जब बाद में पूरी भगवद गीता सुनने के बाद युद्ध करा उसने लेकिन किसके लिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वही कार्य जिसके लिए वो बिल्कुल रो रहा था क्रंदन कर रहा था ऐसा युद्ध ऐसा धनुर्धर रो रहा है क्रंदन कर रहा है उसका मतलब कह रहे मेरे से गांडीव भी नहीं उठ रहा उसके हाथ कांप रहे हैं ऐसा क्षत्रिय क्यों क्योंकि वो आसक्त था पहले भगवान दिखाना चाहते थे कि अगर हमें आसक्ति है तो हमारी ये स्थिति होगी इसलिए आसक्ति हटानी पड़ेगी आसक्ति कैसे हटेगी जब हम ठीक से समझेंगे कि हम कौन है इसको कहते हैं संबंध ज्ञान कि हम कौन है कृष्ण कौन है हमारा उनसे क्या संबंध है ये जीव कौन है इसको ठीक से समझना पड़ेगा जो कि भगवान कपिल समझा रहे हैं पिछले अध्यायों में कि हमें ये अभ्यास करना पड़ेगा सब जीवों सब मतलब जीवों में यहां तक कि कुत्ते में भी पेड़ में भी सब में देखना पड़ेगा जीव है भगवान की शक्ति है इसका अभ्यास करना पड़ेगा जब ये अभ्यास करेंगे तो एक वैष्णव जो है उसके प्रति तो फिर अपराध करने का मतलब ही नहीं उठता एक तो भगवान का अंश है वो भगवान का पुत्र है या पुत्री है और उसके बाद वो कृष्ण नाम जप रहा है हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है जब इस संबंध ज्ञान को ठीक से समझेंगे तो वैष्णव अपराध होने का जो कहते हैं संभावना ही खत्म हो जाती है तभी तो श्रील प्रभुपाद जैसे जो महाभागवत होते हैं या वो अपने को ये देखते हैं वो तभी उनसे रहा नहीं जाता वो पश्चिमी देशों में भी जाके वो वहां पे वो नहीं देख रहे कि ये कैसे हैं वो देख रहे हैं भगवान के जीव है भगवान के पुत्र हैं ये तो वो प्रचार करते हैं आउट ऑफ कंपैशन या दया की भावना से लेकिन साधक प्रचार करते हैं अपनी पवित्रता के लिए और गुरु की आज्ञा से जब साधक प्रचार करता है तो भगवान दयावश उसको ये दृष्टि देते हैं तब वो फिर कनिष्ठ से मध्यम मध्यम से उच्चतर या उत्तम भक्त की स्थिति में पहुंचता है या उत्तम अधिकारी कह लीजिए तो श्रील प्रभुपाद जी यही बात इस तात्पर्य में समझा रहे हैं जो भगवान कपिल देव ने समझाने का हमें ज्ञान दिया कि निवृत्ति किंतु विपरीत धार्मिक कार्य जिसे निवृत्ति कहते हैं प्रवेश परमेश्वर के लिए कर्म करना है कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहकर मनुष्य ना तो किसी स्वामित्व का दावा कर सकता है ना ही उसे अहंकार रहता है श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन में यह करके दिखाया चैतन्य महाप्रभु ने समझाया कि ना मैं कोई ब्राह्मण हूं ना मैं कोई शूद्र हूं ना मैं कोई वैष्णव मैं क्या हूं गोपी भरते हो दास 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 अनुदास उन्होंने सिर्फ बोला नहीं करके दिखाया श्री चैतन्य महाप्रभु के अगर आप पार्षद देखेंगे षट गोस्वामी जनरूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आदि सब ने अपने जीवन में करके दिखाया षट गोस्वामी अष्टकम में कितना अच्छा श्लोक है त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत मिनिस्टर्स थे वो मतलब हम कई बार पढ़ते हैं लेकिन उसको अगर ठीक से समझने का प्रयास करें, सोचिए कि यूपी के जो अभी मिनिस्टर हैं मिस्टर अखिलेश यादव जी, सब कुछ छोड़ दें, आप कोई एक्सपेक्ट कर सकता है उनसे? आप कोई मतलब इवन सोच भी सकता है कि वो छोड़ के ऐसे आ जाएंगे? नहीं। लेकिन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मिनिस्टर्स, कितना एक बोट सोना भरा था, ठीक बात है ना प्रभु जी, जब उन्होंने छोड़ा एक बोट सोने के कॉइन्स से, ये नहीं कि कोई पेपर वाला पैसा था, ऐसा नहीं, उनके पास धन नहीं था, सोना ऐसा धन था जब वो छोड़ा उन्होंने, इसमें से आधा उन्होंने प्रचार के दिया, आधा जो भी जिस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा। कहने का मतलब क्या है कि वे सब कुछ छोड़ दिया, श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज की एक आज्ञा को पूरा करने के लिए ऐसे देश में चले गए जहां अभी अगर हम किसी व्यक्ति को जो सही में प्रचार करना चाहता है अगर उसे भेजेंगे तो घबराएगा एक बार कि मैं अमेरिका जैसे देश में जाके प्रचार करूं। प्रभुपाद जी गए और अकेले, कोई रहने की जगह नहीं, कुछ नहीं। इसे कहते हैं परमेश्वर के लिए कर्म करना। अर्जुन को तो भगवान सीधा सीधा बता रहे हैं आपके सामने कि युद्ध करो, लेकिन हमारी स्थिति कैसी है? क्या भगवान हमें बताएंगे आके सीधा कि ये करो? नहीं। इसीलिए हमें श्री गुरु के चरणों में विनती करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु जी क्या सेवा है मेरे लिए। जब हम शुद्ध हो जाएंगे अच्छे से जप करके, गुरु देते हैं आज्ञा, आप ये कीजिए आप ये कीजिए। शैल प्रभुपाद जी की अगर हम लीलामृत में पढ़ें तो उनके जो शिष्य थे, विशेषकर मान लीजिए ग्रस्त भक्तों का उदाहरण दे तो श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर प्रभु, उनकी पत्नी मालती माता जी और यमुना माता जी, देखिए लंदन चले गए अकेले, चार लोग चले गए और आज लंदन यात्रा देखिए। लंदन की सबसे मुख्य जो स्ट्रीट कह लीजिए, वहां पर आज जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं, हजारों हजारों लोग उसका लाभ उठाते हैं। जन्माष्टमी होती है, हजारों हजारों लोग उसका लाभ उठाते हैं। वो गृहस्थ परिवार में रह, गृहस्थ होते हुए भी उन्होंने क्या किया? कृष्ण के लिए कार्य करा। प्रभुपाद जी ने कहा आप जाइए लंदन में खोलिए सेंटर, सीधा चले गए। सोचा भी नहीं एक बार भी कैसे करेंगे क्या करेंगे। जब हम इस तरह से कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो भगवान बुद्धि देते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान कहते हैं मैं बुद्धि देता हूं। तो इस तरह के गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ सकता है। और इसके आखिरी में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वह इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखते हैं, देखिए इंग्लिश में पढ़ता हूं फिर हिंदी में ट्रांसलेशन कर दूंगा। This is the process of purifying consciousness. With the pure consciousness, only one can enter into the kingdom of God. क्या कहने का तात्पर्य यह है कि इस शुद्ध चेतना के साथ व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, अगर वो सो कॉल्ड दिखने वाले गृहस्थ धर्म में है। लेकिन उसका जो सिद्धांत या उसका आधार क्या है कि कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाना और अपने आप को हमेशा सेवक मानना, जो प्रभुपाद जी इसमें समझाते हैं कि वे कभी भी कृष्ण भक्ति में संलग्न रहकर मनुष्य ना तो किसी स्वामित्व का दावा कर सकता है ना ही उसे अहंकार रहता है कि वह ईश्वर या स्वामी है। उसको यह अहंकार बिल्कुल भगवान स्वयं खत्म करते हैं। जब हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, ध्यान पूर्वक भगवत कथा सुनेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे और ध्यान पूर्वक सेवा करेंगे तो कृष्ण अपने आप ये जो स्वामित्व की भावना है इसको निकाल के जड़ से बाहर फेंक देंगे। और जो व्यक्ति इस स्थिति में रह के कार्य करता है वो कृष्ण वृत्ति या कृष्ण के प्रति प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, उसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। तो ये निवृत्ति, इस तरह की निवृत्ति रखते हुए या इस तरह के धार्मिक कार्य जैसे निवृत्ति कहते हैं हमें प्रयास करना चाहिए। खाते पीते सोईते लय कृष्ण नाम। तब खाते पीते सोते, खाते वक्त भी समझे, व्यक्ति समझेगा, प्रसाद लेते वक्त भी समझेगा कि जो मुझे प्रसाद सेवा कर रहा है वो स्वामी है, मैं सेवक हूं। आराम करने जाना है तब भी ये सोचा कि कैसे मैं सेवक हूं, मुझे सुबह जल्दी उठना है भगवान की सेवा के लिए, या मुझे आराम करना है क्योंकि ये शरीर मुझे मिला है, इसका आराम की आवश्यकता है, अभी मैं पूर्णतः शुद्ध नहीं हूं, मुझे इतना आराम करना चाहिए, अगर मैं काम करूंगा तो मेरा ये शरीर भगवान के द्वारा दिया गया है, कृष्ण के द्वारा दिया गया है, ये ठीक नहीं रहेगा तो सेवा कैसे ठीक से होगी, तो वो करेगा। इस तरह से वो हमेशा अपने आप को एक सेवक की स्थिति में समझते हुए, अपने सेवक को मानते हुए सारे कार्य करेगा, और इस शुद्ध चेतना के साथ इस शरीर छोड़ने के बाद वह भगवत धाम जाएगा, जो कि श्रील प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं। यह चेतना को शुद्ध करने की विधि है, अपने को हमेशा दास समझना, और इस शुद्ध चेतना से ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी कोई कॉमेंट? भगवान कहते हैं ना, वो तो साफ साफ भगवत गीता के कौन से श्लोक है, भूल गया श्लोक, उसे बोलते हैं कोई नुकसान नहीं है, जो भक्ति मार्ग से अगर मान लीजिए गिर गया, मान लीजिए उसने 10 साल भक्ति करी उसके बाद उसने छोड़ दिया, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संग फ्रस्ट्रेटेड हो गया, भक्तों से परेशान हो गया कि मुझे भक्त तंग करते हैं, मैं बाहर जाके रहूंगा, फिर वो गिर गया किसी तरह से मान लीजिए, तो अगले जन्म में उसे अच्छे परिवारों में जन्म मिलेगा, अगले जन्म में भगवान नहीं छोड़ेंगे ना, एक बार किसने महामंत्र जप शुरू कर दिया फिर भगवान नहीं छोड़ने वाले, भगवान तो इतने दयालु और जीवों को भी नहीं छोड़ते, तो हमें कैसे, जो जो जप कर रहा है जिसने थोड़ा सा प्रयास करा उसे कैसे छोड़ेंगे, भगवान की दया तो, किसी संत से मैंने सुना था कि हम भगवान की दया को अभी समझते नहीं है ठीक से, जिस दिन समझ लेंगे उस दिन हमें रोने लग जाएंगे हम लोग, देन वी विल क्राई, दैट्स ऑल, अभी समझ नहीं है इसीलिए ऐसा है, ये रियलाइजेशन नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं है, कृष्ण की कृपा अभी समझ नहीं है, तभी तो हम नहीं रो रहे, जप करने में भी नींद आ रही है, कथा में भी नींद आ जाती है, ये इसका मतलब, ये क्या कहते हैं, दिखा रहे हैं भगवान की हमारे में अभी जो हमारा हृदय वो स्टील की तरह है, भगवान कृष्ण की कृपा, राधा गोविंद महाराज जी करते, कृष्ण की कृपा अगर समझ आ जाए एक बार तो व्यक्ति फिर नहीं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे थे ना कि मुझे कृष्ण से प्रेम नहीं है, अगर कृष्ण से प्रेम होता तो मैं शरीर में कैसे रहूंगा फिर, यह कृष्ण का प्रेम समझ में नहीं आ रहा मुझे, कितनी कृपा है भगवान की ना, ये सब ये ठंड हमें दे दिए समझाने के लिए कि देखिए ये मृत्यु जगह ठीक नहीं है, यहां ठंड भी बहुत ज्यादा है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, एक बार किसी ने राधा गोविंद महाराज से पूछा था वृंदावन में ऐसी इतनी ठंड क्यों पड़ती है और इतनी गर्मी क्यों पड़ती है, पानी भी नमकीन है, बाहर जाओ तो रिक्शे वाले भी तंग करते हैं, लोही बाजार जाओ तो वहां भी कई बार सुनने को मिल जाता है तो राधा गोविंद महाराज जी ने बोला क्योंकि भगवान ने विशेष व्यवस्था करी है कि यहां विषय व्यक्ति ना रुके जल्दी, जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है वो ना रुके, और भगवान की व्यवस्था होती है कि हम और ये भाव लाए, हम दासन दास हैं, सेवक हैं, और ये जो पृथ्वी है या मृत्यु जगह है, या मृत्यु या पूरा संसार, ये हम जैसे जीवों के लिए नहीं है, कृष्ण कहते हैं ये जगह नहीं है आपके लिए रहने के लिए, तभी तो वहां पे जो प्रवृत्ति धर्म कर रहे हैं, कपिल देव भगवान कह रहे हैं क्या होगा उनको, ज्यादा से ज्यादा बहुत ऊंचे लोकों में चले जाएंगे, लेकिन उसका लाभ क्या है, इतनी मेहनत करने के बाद ऊंचे लोगों में जाके फिर नीचे आना है, फिर 9 महीने घर में उल्टा लटकना है, तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो नहीं इसके पीछे भागेगा। आपका कुछ प्रश्न? धर्म तो साक्षात भगवत परिणीता, जो कृष्ण ने कहा वो धर्म है। देखिए वो जो धर्म कह रहे हैं वो समय परिस्थिति और काल के अनुसार भगवान के द्वारा कुछ संदेश दिया गया, ये बात भी मैं चर्चा करना चाहता था कि जैसे वो जो प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, प्रवृत्ति पूरक जो लोग जो प्रवृत्ति करते हैं, ऐसा नहीं कि क्रिश्चियंस में नहीं है, क्रिश्चियंस में भी बहुत जो डोनेशन देते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को चलाने के लिए। इस वक्त जो सबसे ज्यादा धनवान जो रिलीजियस संस्था कह लीजिए जो धर्म का प्रचार कर रही है वो क्रिश्चियन है एक्चुअली में। गोपाल कृष्ण महाराज एक बार बता रहे थे कि जितने भी जो देश जो क्रिश्चियनिटी को समझते हैं या उनको पालन करते हैं वो अपनी तनख्वाह का या अपनी इनकम का 10% वो उसके लिए रखते हैं। वो मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कमा रहा तो वो 1,000 रुपए डोनेशन देगा वो फ्री में बाइबल देते हैं। लेकिन वो जो पूर्णतः समझ है कि जीव की स्थिति क्या है वो चैतन्य महाप्रभु ने दी। तो जो आप देख लीजिए अपनी संस्था में ही इस्कॉन में जो व्यक्ति अच्छे से क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करता रहा वो इस्कॉन में आके रुका, उसको समझ में आ गया हाँ हाँ ये पूर्णता समझ आ गई, तब उसने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र की उसने शरण ली, चैतन्य महाप्रभु की शरण ली। इवन मुस्लिम, हमारे इसमें कोई ऐसा नहीं मुस्लिम भी नहीं, मुस्लिम भी है, क्या पैसा दे रहा है क्या इस्कॉन? कुछ नहीं। क्या श्रील प्रभुपाद जी ने पैसा दिया था? नहीं, तुम वैष्णव धर्म को अपनाओ, नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा इतनी शुद्ध है, इतनी मतलब आत्मा को या मुझको, हम ये कहते ना आत्मा को नहीं, मुझे इतना प्रसन्न करने वाली है, पूर्णता आनंद देने वाली है। तो ये जो भगवान कृष्ण ने कहा बोला है ये धर्म है। बाकी वो समय परिस्थिति के अनुसार कुछ शिक्षाएं दी हैं, ठीक है वो। अगर प्रभुपाद से भी एक बार किसी ने बोला कि आप क्यों सबको हिंदू बनाना चाहते हैं या क्यों अपने धर्म में अपनाना चाहते हैं, प्रभुपाद जी कहते मैं किसी को हिंदू या मुस्लिम बनाने नहीं आया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अगर आप क्रिश्चियन है तो अच्छे से क्रिश्चियन बनिए। फिर वो प्रभुपाद जी हमेशा एग्जाम्पल देते थे कि दाओ शैल नॉट किल, कि कोई व्यक्ति मारेगा नहीं, लेकिन आप क्रिश्चियन कहते हैं लेकिन आपने स्लॉटर हाउसेस खोले हुए, आप कौन से क्रिश्चियनिटी का फॉलो कर रहे हैं? आप मान ही नहीं रहे जीसस क्राइस्ट को और अपने आप को सो कॉल्ड क्रिश्चियन मान रहे हैं। और यहां तो खैर उनकी बात ही नहीं हो रही, यहां तो ऐसे सभ्य परिवारों की बात हो रही है जो समझते हैं कि कृष्ण भी है राम भी है लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? इंद्र तृप्ति, ये भी हटाना है। हमारे तो जो राजाओं जो हमारे भगवान के अमरीश महाराज उन्होंने जीवन में करके दिखाया, पूरे मतलब संसार के राजा है वो। परीक्षित महाराज जैसे ही पता चला 7 दिन बाद हरि बोल, सब छोड़ दिया। और राधागोविंद महाराज कहते हैं मल्लवत समझते हैं आप, जब आप सुबह दीर्घ शंका जाते हैं सुबह तो आप देखते हैं आपने क्या छोड़ा पीछे, कोई नहीं देखता, इतना डिटैचमेंट होता उनमें। चलो ये 7 दिन छोड़ो, सुनो भागवत कथा, सब खत्म, सब छोड़ दिया। ये होना चाहिए गृहस्थ जीवन का उद्देश्य, ये नहीं कि दादा पोते और उसके बाद और वो और फिर हरि बोल फिर अगले जन्म फिर आ जाओ, नहीं 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 नहीं, ये नहीं है जीवन का उद्देश्य। अपनी कर्तव्य पूरा हुआ वो भी कृष्ण भावना में, जो कर्तव्य करना है वो भी कृष्ण भावना में करना है, समझते हुए करते हुए, और जब समय पूरा हुआ हरि बोल। हमारे कितने देखिए इंद्रद्युम्न महाराज सन्यासी कैसे प्रचार कर रहे हैं पूरे यूरोप में, अब तो भारत में भी शुरू करने वाले हैं, कितने सन्यासी। कदम कानन महाराज कितना प्रचार कर रहे हैं। तो इस तरह से समझना अच्छे से। और कोई प्रश्न, माताएं कोई टिप्पणी या कोई कमेंट? प्रसाद का समय हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त गौर भक्त वृंद की जय हो।